Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Mohan Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
कण कण में अनुस्यूत सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए परोपकारार्थ जन कल्याणार्थ यह दिव्य संस्था जिन महापुरुष के द्वारा संस्थापित हुई है, ऐसे प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन महाराज श्री जी के चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन परंपरा का मूल शास्त्र है वेद, जिसको निगम शब्द से भी कहा जाता है, पर कहीं कहीं वेदपत्तिक शब्द आगम के द्वारा भी कहा जाता है। और समस्त आस्तिक दर्शनों का यह वेद मूलाधार है। इसलिए वेद शब्द के ऊपर जब विचार किया जाता है तो यह निर्णय होता है व्याकरण के अनुसार विद ज्ञाने से भी हो सकता है, विद सत्तायाम से भी हो सकता है, विद लाभे से भी हो सकता है। इसलिए संपूर्ण वेद के ऊपर भाष्य लिखने वाले सायण आचार्य को लिखते हैं, विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः तद उपायश्च अनेन इति वेदः। केवल मोक्ष ही पुरुषार्थ नहीं है, अपितु धर्म अर्थ काम भी है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के स्वरूप का ज्ञान जिससे होता है और इसके साधन का भी ज्ञान, उपाय का ज्ञान जिससे होता है, उसको वेद कहा जाता है। इसलिए चतुर्विद पुरुषार्थ की प्राप्ति, प्राप्ति के साधन का ज्ञान वेद से होता है। इसलिए अपनी सनातन परंपरा के अनुसार वेद को शास्त्र कहा जाता है। एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम, ये शास्त्र का लक्षण होता है। एक ही प्रयोजन है सभी का, साक्षात अथवा पारंपरिक मोक्ष है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है। तो मोक्ष के लिए है वेद, और मोक्ष के जितने भी साधन होते हैं, अंतरंग और बहिरंग, श्रवणादि अंतरंग साधन है ज्ञान के, कर्म उपासना बहिरंग साधन है, सबकी जानकारी, सबके स्वरूप का ज्ञान वेद से ही होता है। और इस वेद का जो अनुसरण करता है वो भी प्रामाणिक हो जाता है, चाहे आस्तिक दर्शन हो चाहे नास्तिक दर्शन हो। जितना अंश वेद सम्मत होगा उसको प्रमाण कहा जाता है। इसलिए कुमारिल भट्ट जो मीमांसा के बड़े विद्वान है, वो कहते हैं, विरोधेतु अनपेक्षम स्यात् असत् हि अनुमानम्। यदि वेद से यदि विरोध हो जाएगा, वो व्यक्ति कोई भी हो, कितने बड़े महापुरुष क्यों ना हो, चाहे भगवान का अवतार क्यों ना हो, जैसे बुद्ध को भगवान कहा जाता है तो हिंदू लोग भी मानते हैं बुद्ध को भगवान, परंतु उनका कथन यदि वेद से विरुद्ध हो जाएगा तो उनका उच्चरित वाक्य प्रमाण नहीं होता है। और यदि वेद मूलक हो जाएगा तो वेद मूलकत्वेन, वेद को आधार मान करके, उनके वाक्य में प्रामाण्य का अनुमान किया जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता भागवत हो, रामायण हो, इसको इसलिए प्रमाण माना जाता है कि इसका आधार वेद है, न कि भगवत परमात्मा के द्वारा उच्चरित है। ऐसा यदि माना जाएगा भगवान के द्वारा उच्चरित होने से प्रमाण है तो व्यभिचार हो जाएगा, तो भगवान बुद्ध का वाक्य भी भगवान से उच्चरित है तो उनके वाक्यों की प्रमाण मानो। फिर कपिल भी भगवान है तो पुरुष को भी सत्य माना जाता है, प्रकृति और प्रकृति का कार्यों को भी सत्य माना जाता है तो उसको भी प्रमाण मानो। तो बड़े बड़े महापुरुष न्याय के आचार्य, वैशेषिक के आचार्य ऐसे बहुत सारे हैं, तो उनसे उच्चरित समस्त वाक्यों को प्रमाण माना जाएगा। यदि भगवान के द्वारा उच्चरित होने मात्र से प्रमाण कहने पर, इसलिए कुमार भट्ट ने कहा जितना अंश भगवान शंकराचार्य भी कहीं कहीं लिखते हैं उन महापुरुषों का हम अनादर नहीं करते हैं। कणाद, गौतम आदि का बहुत आदर करते हैं, परंतु जितना वेद से विरुद्ध होता है उसको हम प्रमाण नहीं मानते हैं। इसलिए गीता वाक्यम प्रमाणम श्रुति मूलकत्व न कि भागवत उच्चरितत्व। तो हमारा ये कहना है कि जो ग्रंथ चतुर्विध पुरुषार्थ का ज्ञान कराता हो और समस्त साधनों का ज्ञान कराता हो, अंतरंग साधन बहिरंग साधन, वो तो केवल वेद में ही मिलता है, अन्यत्र मुख्य रूप से नहीं मिलता है। मुख्य रूप से तो वेद ही मिलता है, अंतरंग साधन बहिरंग साधन। और गौण रूप से, सारांश रूप से गीता में भी तीनों का प्रतिपादन है, कर्म, उपासना और ज्ञान। इसलिए गीता को भी शास्त्र कह दिया जाता है, इदम शास्त्रम पुण्यम, इदम गीता शास्त्रम पुण्यम कहा जाता है ना महात्म्य में। तो प्रथम छह अध्याय में कर्मों का प्रतिपादन है गीता में, सप्तम अध्याय से बारहवां अध्याय पर्यंत भक्ति उपासना का है मुख्य रूप से, त्रयोदश अध्याय से अंतिम तक ज्ञान का है मुख्य रूप से। इसलिए गीता को भी वेद की तरह गौण रूप से, उपचार रूप से शास्त्र कहा जाता है। इसलिए हमारा मुख्य आधार है वेद सनातन परंपरा में, और जहां पर जिस ग्रंथ में केवल एक का प्रतिपादन कर दिया हो, कर्म का हो, उपासना का हो अथवा ज्ञान का हो, तो उसको प्रकरण कहा जाता है। प्रकरण जो आप लोग विचार कर रहे हैं स्वाध्याय में पंचदशी, तो पंचदशी शास्त्र नहीं है, प्रकरण है। वहां पर शुद्ध परमात्मा का वेदांत प्रतिपाद्य जो विषय है जीव ब्रह्म का एकत्व, जिसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, उसका प्रतिपादन है। तो ना जीव के स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ना परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, अपितु दोनों का जो एकत्व है शुद्ध लक्ष्यार्थ, तो उसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपके पंचदशी का सारांश है। तो मोक्ष का जो साक्षात साधन, अज्ञान निवर्तक जो साक्षात साधन ज्ञान है, उसका प्रतिपादन पंचदशीकार ने किया, गुरु और चेले मिलकर के किए, आप लोग जानते ही हैं। इसलिए पंचदशी को प्रकरण कहा जाएगा, मीमांसा आदि को भी प्रकरण कहा जाएगा, क्योंकि कर्म का प्रतिपादन है। भक्ति आदि ग्रंथ को, नारद भक्ति सूत्र आदि, इसको भी प्रकरण कहा जाएगा। तो अपनी सनातन परंपरा के अनुसार वेद हो गया शास्त्रात्मक ग्रंथ है, और इसी का समस्त महापुरुष जितने भी आस्तिक दर्शन के हैं आचार्य, सांख्य हो, योग हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सभी का आधार एक वेद है। और वेद सार्वभौम ग्रंथ है, इसमें सबका अधिकार है, अधिकारी के रूप से, अधिकारी के रूप से वेद में सबका अधिकार है। किसी का कर्म में है, किसी का उपासना में है, और किसी का ज्ञान में भी हो सकता है। परंतु ज्ञान में अधिकार है, सबका नहीं हो सकता है। देसी घी को पचाने के लिए सबका अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार ज्ञान को पचाने के लिए सबका अधिकार नहीं, सामर्थ्य नहीं हो सकती है। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है, सूक्ष्मता है बुद्धि में, तो आप ब्रह्म का प्रतिपादन तो कर सकते हैं बढ़िया ढंग से, व्याख्यान तो कर सकते हैं, ब्रह्मवादी हो सकते हैं आप, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते अधिकार के बिना। इसलिए निष्काम कर्म के द्वारा जिसने ज्ञान को धारण करने की शक्ति सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया है, बुद्धि के एकाग्र को, एकाग्रता को जिसने प्राप्त नहीं किया है, और ये जो अनादि अनिर्वचनीय माया है, उसको दूर करने की सामर्थ्य ईश्वर की कृपा होती है। इसलिए यहां पर प्रथम अध्याय में कहा जमराज जी ने, नायम आत्मा प्रवचने लभ्य न मेधया न बहुना सुते न यमे देश वृणुते, कहा मतलब परमात्मा की कृपा जिसके ऊपर प्राप्त नहीं है, उसको माया को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं प्राप्त हो सकती है। यह है सच्चाई। इसलिए साधक का साधकत्व इसी में है। शास्त्र जो सच्चाई को बताता है उसको समझना, उसको स्वीकार करना है। केवल समझने मात्र से साधकत्व नहीं आता है। समझते तो नास्तिक भी समझते हैं शास्त्र को, लेकिन समझ करके अपनाना सच्चाई को, यही साधक का साधकत्व है। जैसे नारद में साधकत्व आया, तुम क्या पढ़े हो, सब बता दिया सनत कुमार जी से, हम इतना पढ़े हैं इतना पढ़े हैं, फिर भी हम जीवन भर दुखी है, यही साधक का साधकत्व है। गुरु पूछता है तुमको क्या आता है, सब बता देना है, यही साधक का साधकत्व है। तो शास्त्र जितना प्रतिपादन करता है उसको स्वीकार कर लेना, यही साधक का साधकत्व है। इसलिए कर्म और उपासना के द्वारा जिसने ज्ञान को पचाने की शक्ति को प्राप्त कर लिया, वही साधक का साधकत्व है। और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो साधक नहीं होता है, वो तो स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। जो कुछ प्राप्त करना चाहता है उसको साधक कहा जाता है। तो इस बार हम लोग विचार करने जा रहे हैं, विचार करने का आधार ये कठोर उपनिषद है। तो इसमें द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अपने गिरीश भाई जी ने बताए कि प्रथम अध्याय तो बहुत लोग सुनाते हैं, सुनते आ रहे हैं, इसलिए द्वितीय अध्याय से विचार करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की है। और कट शाखा के अंतर्गत है। सभी उपनिषद में एक ही प्रतिपाद्य होता है और एक ही विषय होता है, जीव ब्रह्म का एकत्व है। और सभी उपनिषद में जो अनुबंध में आता है अधिकारी, अनुबंध तो आप लोग जानते ही है, अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध, तो अधिकारी वही होता है जिसने कर्म और उपासना के द्वारा विवेक आदि को प्राप्त कर लिया हो, जिसको साधन चतुष्टय कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिसने साधन चतुष्टय को प्राप्त नहीं किया है और वेदांत का श्रवण करता हो, उनका क्या होगा, उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा, वे ये बहुत शंका आती है, संशय भी आता है लोगों के मन में। तो जिसने प्राप्त कर लिया साधन चतुष्टय संपत्ति को, उनको तो ज्ञान होगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। परंतु जिसने प्राप्त नहीं किया हो फिर भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता हो, उनका भी कल्याण हो सकता है, होता है। लेकिन कल्याण के हेतु क्या बताया, श्रद्धा, ये पंचदशी में सुनते हैं ना, इसी को ही जिसने आधार बना लिया, तत् चिंतनम तत् कथनम अन्यन्यम तत् प्रबोधनम, ये जो बताया ब्रह्माभ्यास पंचदशी में है। पंचदशी जो ऐसा एक ग्रंथ है, इसका बहुत चिंतन करना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया पंचदशी को आरंभ करके। तो साधन चतुष्ट संपत्ति प्राप्त ना भी हो किसी को, परंतु श्रद्धा पूर्वक ये सुनता हो तो पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन सा पुण्य? पुण्य भी दो प्रकार का होता है। तीन प्रकार का भी कह सकते हैं। एक तो शुक्ला है, जिसमें पाप मिश्रित ना हो, उसको शुक्ला कहा जाएगा। और जिसमें थोड़ा मिश्रित हो पाप, उसको क्या कहेंगे? शुक्ला कृष्ण कहा जाता है। योग दर्शन में विचार आता है, दो हो गए, एक शुक्ला हुआ और एक शुक्ल कृष्ण हुआ। तीसरा एक होता है, उसको योग भाष्यकार कहते हैं भगवान व्यास जी, अशुक्ल अकृष्णा।